अध्याय अधूरी चाहत का जहर। नाश्ते के बाद सभी धीरे धीरे अपनी अपनी जगहों पर बिखर गए। दादाजी अपने कमरे की ओर चले गए, यशवर्धन माथुर साहब के साथ स्टडी में चले गए और शालिनी अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी में चली गई। डाइनिंग हॉल की गहमा गहमी कुछ ही देर में खत्म हो गई थी। बगीचे का माहौल। रैना और विक्रम साथ साथ हवेली के पिछवाड़े बने हरे भरे गार्डन में टहल रहे थे। हल्की हवा पेड़ों की शाखों से पत्तियां गिरा रही थी। फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में खुली हुई थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जानती हो, इस हवेली का ये कोना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यहां सन्नाटा भी मधुर लगता है। रैना ने धीमे स्वर में कहा, हां, सन्नाटे में ही तो असली आवाजें सुनाई देती हैं, दिल की, मन की। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। रैना कभी पेड़ की शाख को छूती, कभी फूल को सूंघती और फिर हल्की मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देख लेती। विक्रम हर बार उस मुस्कान पर ठहर जाता। रैना चलते चलते अचानक एक पल रुकी और बोली, विक्रम, कभी कभी लगता है कि इस जगह की सारी उदासी को कोई बदल सकता है, तो वो तुम हो। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और मुझे लगता है कि मेरी अधूरी दुनिया को कोई पूरा कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। उनके बीच का ये पल इतना सच्चा और सहज था कि पास खड़े गुलाब भी मानो गवाही दे रहे थे। खिड़की से जलता दिल। ऊपर कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था अखिल। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें भारी थीं, उसका सीना जल रहा था। उसने बड़बड़ाना शुरू किया, ये औरत तो ऐसी ही होती है, खटिया। जिसे भी अमीर ताकतवर आदमी दिखे उसी से चिपक जाती है। न कोई ईमान, न कोई वफा। आज विक्रम, कल कोई और, यही है रैना। उसकी मुट्ठियां कस गईं, पर आंखें बार बार नीचे ही टिक रही थीं, जहां रैना और विक्रम के बीच हर पल उसके दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। अर्जुन का आगमन। अचानक पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, ये सब देख देख कर क्या हासिल करोगे अखिल? अखिल ने पलट कर देखा। वहां अर्जुन खड़ा था, उसका बड़ा भाई। अर्जुन भी खिड़की से नजारा देख चुका था। उसने अखिल के चेहरे पर गुस्से और जलन की वो लकीरें साफ पढ़ लीं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं अखिल। जो चीज तुम्हारी होती है उसे तुम किसी और के पास नहीं देख सकते। लेकिन भूल गए क्या, ये रिश्ता तुम्ही ने तोड़ा था। इसमें रहना या किसी और की कोई गलती नहीं है। अखिल का चेहरा तन गया, उसकी आंखों में खून उतर आया। आप मुझे इस तरह मत समझाइए भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए इज्जत करता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी जिंदगी के बारे में फैसला सुनाएं। अर्जुन का स्वर और कड़ा हो गया। फैसला मैं नहीं सुना रहा, हकीकत बता रहा हूं। याद रखना, हमारे लिए मिस्टर माथुर का कंपनी से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारी हरकतों से ये रिश्ता बिगड़ा तो डैड कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अखिल ने होंठ भींच लिए, उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द गले में ही अटक गए। अर्जुन ने एक आखिरी नजर उसके चेहरे पर डाली और वहां से चला गया। कमरे में अब सिर्फ अखिल था। उसकी आंखों में गुस्सा, उसके सीने में जलन और उसके दिमाग में रैना की मुस्कान की चुभन। खिड़की से गार्डन का नजारा अब भी वही था, मगर अखिल की आंखों में एक और नया तूफान जन्म ले चुका था।